एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
जगत के अंत तक सदा तेरे साथ।
याद रहूंगा, यीशु ने कहा कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी आँखों की पुतली समा रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को ग्रहण कर और तेरे वचनों से बहुतायत से आशीष दे पिता। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें तेरे वचन के द्वारा बहुत सहायत से आशीष दे पिता, और मेरे संग हो तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रिय श्रोताओं, आज का मेरा चर्चा का विषय है बपतिस्मा के लिए योग्यताएं और बपतिस्मा का फल। आइए हम आज इस विषय पर चर्चा करें। पहला है विश्वास। बपतिस्मा के लिए एक शर्त पाप से मुक्ति का एकमात्र साधन के रूप में यीशु के प्रायश्चित बलिदान में विश्वास है। मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, मरकुस 16:16। प्रेरित कलीसिया में केवल वे लोग जो सुसमाचार में विश्वास करते थे उनको बपतिस्मा दिया जाता था। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 8:12, 36, 37 और 18:8। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, रोमियो 10:17। शिक्षा बपतिस्मा की तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा है। मसीह का महान आदेश इस तरह की शिक्षा के महत्व की पुष्टि करता है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यह यीशु मसीह का वचन है। हम पाते हैं मत्ती 28:19-20 में शिष्य बनने के लिए पूरी तरह से शिक्षा देना शामिल है। दूसरा है पश्चाताप। पश्चाताप करो, पत्रस ने कहा, और तुम में से हर एक बपतिस्मा ले, प्रेरितों के काम 2:38। परमेश्वर के वचन की शिक्षा न केवल विश्वास बल्कि पश्चाताप और परिवर्तन भी पैदा करता है। परमेश्वर के बुलावे के प्रत्युत्तर में लोग अपनी खोई हुई स्थिति को देखते हैं, अपने पापी होने को स्वीकार करते हैं और स्वयं को परमेश्वर के अधीन करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, मसीह के प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं और उसके साथ एक नए जीवन के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। परिवर्तन के बिना वे यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल पश्चाताप के द्वारा ही वे पाप के लिए मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं, बपतिस्मा के लिए एक शर्त। और पश्चाताप का फल है जो लोग बपतिस्मा की इच्छा रखते हैं उन्हें विश्वास का अंगीकार करना चाहिए और पश्चाताप का अनुभव करना चाहिए। परंतु जब तक वे पश्चाताप के योग्य फल नहीं लाते, मत्ती 3:8 कहता है, वे बपतिस्मा के लिए बाइबल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके जीवन को सत्य के प्रति, जैसा कि यीशु में है, अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के माध्यम से परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहिए। बपतिस्मे की तैयारी में उन्हें गलत विश्वासों और प्रथाओं को छोड़ देना चाहिए। उनके जीवन में प्रदर्शित आत्मा के फल प्रकट करेंगे कि प्रभु उनमें वास करता है और वे उसमें, यूहन्ना 15:1-8। जब तक वे मसीह के साथ अपने संबंध का यह प्रमाण नहीं देते, वे अभी तक कलीसिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद है उम्मीदवारों की परीक्षा। कलीसिया का सदस्य बनने में एक आत्मिक कदम उठाना शामिल है। यह केवल किसी का किताब में नाम दर्ज होने की बात नहीं है। बपतिस्मे के लिए उम्मीदवारों की तैयारी को निर्धारित करने के लिए बपतिस्मा देने वाले जिम्मेदार हैं। उन्हें उन सिद्धांतों के बारे में उम्मीदवार की समझ का पता लगाना चाहिए जिन्हें कलीसिया मानती है और एक नई रचना और प्रभु यीशु में सुखद अनुभव का प्रमाण देना चाहिए। फिर भी उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे बपतिस्मे की चाह रखने वालों के उद्देश्यों का न्याय ना करें। जब कोई व्यक्ति खुद को कलीसिया की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता है, तो हमें उसके जीवन के फल की जांच करनी चाहिए और उसके उद्देश्य की जिम्मेदारी खुद पर छोड़ देनी चाहिए। कुछ को बपतिस्मे के पानी में जिंदा दफना दिया गया है, स्वयं मरा नहीं। इन्हें मसीह में नया जीवन नहीं मिला। जो लोग इस तरह से कलीसिया में शामिल हुए हैं, वे अपने साथ कमजोरी और धर्म त्याग के बीज लेकर आए हैं। उनका अपवित्र प्रभाव कलीसिया के भीतर और बाहर के लोगों को भ्रमित करता है और इसकी गवाही को खतरे में डालता है। क्या शिशुओं और बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए? बपतिस्मा नए जन्म लेने के संदर्भ में कलीसिया में नए विश्वासियों को शामिल करता है। उनके परिवर्तन ने उन्हें बपतिस्मा और कलीसिया की सदस्यता के योग्य बना दिया है। शामिल होना नए जन्म पर होता है, ना कि शिशु जन्म पर। यही कारण है कि विश्वासियों ने बपतिस्मा लिया। दोनों पुरुषों और महिलाओं ने प्रेरितों के काम 8:12-13, 29-38 और 9:17-18 तथा 1 कुरिन्थियों 1:14 नए नियम में कहीं नहीं काल बार्थ ने स्वीकार किया शिशु बपतिस्मा की या तो अनुमति है या आज्ञा दी गई है। जी आर बेल्सी मुरे ने स्वीकार किया, मैं खुद को शिशु बपतिस्मे में नए नियम कलीसिया के बपतिस्मा को पहचानने में असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि शिशु और छोटे बच्चे परिवर्तन का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे बपतिस्मे के योग्य नहीं होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें नई वाचा के समुदाय से बाहर रखा गया है? निश्चय रूप से नहीं। यीशु ने उन्हें अपने अनुग्रह के राज्य से बाहर नहीं किया। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, उसने कहा, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और उसने उन पर हाथ रखा, मत्ती 19:14-15। विश्वास करने वाले माता पिता अपने बच्चों को मसीह के साथ एक संबंध में मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो अंततः उन्हें बपतिस्मे की ओर ले जाएगा। उन माताओं के प्रति यीशु की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने जो अपने बच्चों को आशीषित करने के लिए उनके पास लाई थी बाल समर्पण की प्रथा को प्रेरित किया है। इस विधि में माता पिता अपने बच्चों को कलीसिया में प्रस्तुत करने या परमेश्वर को समर्पित करने के लिए लाते हैं। एक व्यक्ति को किस उम्र में बपतिस्मे के लिए तैयार होना चाहिए? व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया जा सकता है यदि वे पहला बपतिस्मे के अर्थ को समझने के लिए सही उम्र के हैं, दूसरा मसीह के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं और परिवर्तित हो गए हैं, तीसरा मसीही धर्म के मूल सिद्धांतों को समझते हैं और चौथा कलीसिया में सदस्यता के महत्व को समझते हैं। एक व्यक्ति अपने उधार को खतरे में तभी डालता है जब वह जवाबदेही की उम्र में आ जाता है और फिर भी पवित्र आत्मा के प्रभाव को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि किसी भी उम्र में व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता के मामले में भिन्न होते हैं। कुछ अन्य की तुलना में कम उम्र में बपतिस्मे के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हम बपतिस्मे के लिए कोई निश्चित न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं कर सकते। जब माता पिता अपने बच्चों की कम उम्र में बपतिस्मा लेने की सहमति देते हैं तो उन्हें उनके आध्यात्मिक विकास और चरित्र विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। कभी कभी जिन लोगों ने डूब के द्वारा बपतिस्मा का अनुभव किया है वे दोषी महसूस करते हैं कि उनका पुनर्बपतिस्मा होना चाहिए। क्या यह इच्छा पौलुस के इस दावे के विपरीत है कि केवल एक ही बपतिस्मा है? इफिसियों 4:5 पौलुस के कार्य से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। इफिसुस की यात्रा पर वह कई शिष्यों से मिला जिन्हें यहूना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था। उन्होंने पश्चाताप का अनुभव किया था और आने वाले मसीहा में अपने विश्वास को व्यक्त किया था। प्रेरितों के काम 19:1-5 में हम पाते हैं। इन शिष्यों को सुसमाचार की स्पष्ट समझ नहीं थी। जब उन्होंने यहूना के हाथों बपतिस्मा प्राप्त किया तो वे गंभीर गलतियां कर रहे थे, परंतु स्पष्ट ज्योति के साथ उन्होंने खुशी खुशी मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया और इस अग्रिम कदम के साथ उनके दायित्वों में बदलाव आया। जैसे जैसे उन्होंने एक शुद्ध विश्वास प्राप्त किया उनके जीवन और चरित्र में एक तदनुसार परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के प्रतीक में और मसीह में उनके विश्वास की स्वीकृति के रूप में उनको यीशु के नाम पर पुनर्बपतिस्मा दिया गया। मसीह के बहुत से सच्चे अनुयायियों को ऐसा ही अनुभव हुआ है। परमेश्वर की इच्छा की एक स्पष्ट समझ मनुष्य को उसके साथ एक नए संबंध में रखती है, नए कर्तव्यों का पता चलता है। बहुत कुछ जो पहले निर्दोष या यहाँ तक कि प्रसन्न प्रतीत होता था अब पापी प्रतीत होता है। उसका पहला बपतिस्मा अब उसे संतुष्ट नहीं करता है। उसने अपने आप को एक पापी देखा है जिसे परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा दोषी ठहराया गया है। उसने पाप के लिए मृत्यु का नए सिरे से अनुभव किया है और वह फिर से बपतिस्मा द्वारा मसीह के साथ दफनाया जाना चाहता है ताकि वह जीवन के नएपन में चलने के लिए उठ सके। ऐसा फैसला यहूदी धर्मांतरित लोगों को बपतिस्मा देने में पौलुस के उदाहरण के सामंजस्य में है। उस घटना को पवित्र आत्मा ने कलीसिया के लिए एक शिक्षाप्रद शब्द के रूप में दर्ज किया था। पवित्र शास्त्र ऐसा कुछ भी नहीं कहता है जो उन व्यक्तियों के लिए पुनर्बपतिस्मा से इनकार करेगा जिन्होंने गंभीर पाप या धर्म त्याग के माध्यम से परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ा है और फिर पुनर्परिवर्तन का अनुभव किया है और अपनी वाचा के नवीनीकरण की इच्छा रखते हैं। आइए अब हम बपतिस्मा का फल को देखें। बपतिस्मा का प्रमुख फल मसीह के लिए जिया गया जीवन है। लक्ष्य और आकांक्षाएं स्वयं पर नहीं बल्कि मसीह पर केंद्रित होती हैं। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, कुलुसियों 3:1-2। बपतिस्मा मसीह के लिए प्राप्य उच्चतम शिखर तक पहुंचना नहीं है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, हम परमेश्वर की बढ़ाने की योजना में दूसरों की सेवा करने के लिए मसीह अनुग्रह प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताय से बढ़ती जाए। दूसरा पत्रस 1:2। जब हम अपने बपतिस्मे की प्रतिज्ञाओं के प्रति ईमानदारी से प्रतिबद्ध रहते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जिनके नाम से हमें बपतिस्मा दिया गया है आश्वासन देते हैं कि हमारे पास हर आपात स्थिति में सहायता करने के लिए, जिसका सामना हम बपतिस्मे के बाद के जीवन में कर सकते हैं, दिव्य शक्ति तक हमारी पहुंच हो। दूसरा फल मसीह की कलीसिया के लिए जिया गया जीवन है। हम अब अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, हम मसीह की कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। हम जीवित पत्थरों के रूप में परमेश्वर का मंदिर बनाते हैं। हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 2:2-5 में, हम कलीसिया के मुखिया मसीह के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखते हैं, जिससे हम प्रेम में वृद्ध और विकास के लिए अपना दैनिक अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इफिसियों 4:16। हम वाचा समुदाय के भीतर जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हैं, जिसके सदस्य नए बपतिस्मा लिए सदस्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:12-26। अपने और कलीसिया के भले के लिए इन नए सदस्यों को आराधना, प्रार्थना और प्रेममयी सेवा के जीवन में शामिल होना चाहिए। इफिसियों 4:12। अंतिम फल दुनिया में और दुनिया के लिए जिया गया जीवन है। यह सच है कि हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया है स्वर्ग में अपनी नागरिकता रखते हैं। फिलिपियों 3:20। परंतु हमें संसार से बाहर इसलिए बुलाया गया है कि हम मसीह के देह के भीतर प्रशिक्षित होकर सेवक के रूप में संसार में लौटें और मसीह की बचाने वाली सेवकाई में भाग लें। सच्चे शिष्य कलीसिया के अंदर संसार से बाहर निकलकर नहीं आएंगे। हम मसीह के राज्य में धर्म प्रचारक के रूप में पैदा हुए हैं। हमारी बपतिस्मे की वाचा के प्रति विश्वास योग्यता में दूसरों को अनुग्रह के राज्य में ले जाना शामिल है। बाइबल अध्ययन कितना थोड़ा या कितना लंबा समय तक होना चाहिए निर्धारित नहीं है। सबसे महत्व बात तो यह है कि आप समझे और आप जाने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपनाएं और यीशु मसीह में नया जीवन व्यतीत करें। आज परमेश्वर उत्सुकता से हमारे उस प्रचुर जीवन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे उसने इतनी कृपा से प्रदान किया है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यह प्रतिज्ञा हम प्रेरितों के काम 22:16 में यह वचन हम पाते हैं। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए। तू हमें बुलाता है अपने कलीसिया में भाग होने के लिए, उसका सदस्य होने के लिए पिता, और हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन व्यतीत करें। मैं मेरे हर एक श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तुझे नहीं चुने हैं, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें उभार, उन्हें चला पिता, कि वे तेरे प्रेम को समझे और तेरे सच्चाई को जाने और तेरे सदस्य ते कलीसिया के सदस्य बने और हम सबों को ते राज के लिए तैयार कर तेरा पवित्र आत्मा से हमें भर दे और हम सबों को ते राज के लिए तैयार कर सुना दे सकते हैं।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पोस्ट बॉक्स 1446 पुणे 411037 महाराष्ट्र भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।